نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خود کو کامیاب کروانے کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کامیاب ہونے کے لیے خود کو منظم کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے, اور خود نظمی جو ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو نظم و ضبط میں دینے کی بات ہے. پیچھے تھوڑی سی ذکر کیا تھا آپ سے کہ اپنی عادات کو بدلنے کا نام ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو میں اور آپ اپنی عادتوں کے غلام ہیں. یہ جملہ لکھیں, میں کس کس کی غلام ہوں, تو آپ کو ایک حقیقت کھل کے دکھنی چاہیے کہ آپ اپنی عادتوں کی غلام ہیں. مثلا اگر دیر سے کوئی کام کرنے کی عادت ہے نا تو ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کی بات مان کے, ہم بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں جب کہیں لیٹ پہنچتے ہیں, پھر ہم اس دن اپنے اوپر ملامت بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے آج کے بعد کبھی بھی لیٹ نہیں ہونا. لیکن عادت چونکہ ہمارا مالک ہے نا تو وہ ہمیں اپنی غلامی میں لے لیتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک نشہ بن جاتی ہے. اور یہ بھی لکھ لیں کہ عادت ایک نشہ بھی ہوتی ہے. بندے کو نشے میں پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز فائدے کی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی میں ضرور اس کام کو کروں گی. اور نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم بار بار اپنی غلطیوں کو دہراتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو منظم نہیں کر پاتے نا مثبت طور پہ, تو غلطیوں کو دہرائیں گے, ہمارے حوصلے پست ہوں گے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ڈی موٹیویشن ہوتا ہے, کسی نے مجھے یہ کہا پھر اس کے بعد میں نے جرت ہی نہیں کی, ایک دفعہ یہ ہوا اس کے بعد میں نے کیا ہی نہیں. پھر ہم اکثر بولتے ہیں ہار جانا تو میری قسمت میں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ انسان بہت زیادہ اپنے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. تو جملہ جو آپ کو سوچنے کو دیا تھا وہ کیا تھا کہ عادات پہلے بے ضرر خیالات کی صورت میں ہوتی ہیں, پھر مسلسل کرنے سے اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں جیسے پتھر ہے. پتھر کو ہٹانے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے نا, تو کرنا کیا چاہیے, اپنے آپ کو خود منظم کریں. خود نظمی ایک مشق ہے. آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بتاؤں گی, ایکسرسائز کا نام ہے. آپ نے دیکھا کہ جب ہم ایکسرسائز شروع کریں تو بہت مشکل لگتی ہے, تھوڑے سے قدم چل کے ہم تھک جاتے ہیں, کسی مشین پہ 8-10 دفعہ بیٹھیں گے تو ہمارا سانس پھولنے لگتا ہے. خود نظمی بھی ایک مشق ہے, اور آپ کی زندگی بھر کی جو کمائی ہے نا اس کو آپ کے مصرف میں لانے والی چیز خود نظمی ہے. کیا پتا چلا, آپ جو مرضی خوبیاں رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی زندگی میں خود طور پہ منظم نہیں ہیں نا تو آپ کی وہ چیزیں بیکار ہو جائیں گی. اور خود نظمی آپ کو جرت بخشتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو داؤ پر لگا سکیں, کانفیڈینس ڈیولپ کرتی ہے. خود نظمی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے زبانی جمع خرچ ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ بات ہی کرتے ہیں صرف زبانی, میں یہ تھا چاند پہ چلے جاؤں گا, ستارے توڑ لاؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. لیکن خود نظمی والا جو شخص ہوتا ہے نا, جو خود کو منظم کر لیتا ہے, اس کو باتوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. جتنی باتیں بھی آپ لکھ لیں بیکار ہیں, تمام جو باتیں, اگر آپ کے اندر خود نظمی نہیں ہے. آپ پلان بنائیں, آپ نے پلانر بنا لیا, مثال دیتی چھوٹی سی بات ہے, دعوت کرنی آپ نے اپنے گھر میں 20 لوگوں کی, کیا پکے گا لکھ لیا, گروسری منگا لی, اور گھر کیسے سیٹ ہوگا, برتن کیا چاہیں گے, 10 تیاریاں آپ کر چکے ہوں, سب بیکار ہو جائیں گی اگر آپ آرگنائز نہ ہوئے. مہمانوں کے آنے تک کھانا نہیں پکے گا, چیزیں گر رہی ہیں, پڑ رہی ہیں, کوئی بریڈ جل گئی ہے تو کوئی اوور کوک ہو گئے ہیں چاول. یعنی آپ کو خود کو منظم کرنا ہے, کم ریسورسز بھی زیادہ فائدہ دیتے ہیں جب آپ خود کو اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں. آپ کے اندر خواہش کے تحت تحریک کا عمل پیدا ہو سکتا ہے, آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے اوپر پورا اختیار ہے. آپ چاند پہ جانا چاہتے ہیں, آپ خود کو چاند پہ پہنچا ہوا تصور کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ چاند پہ بھی پہنچ سکتے ہیں, شرط ایک ہے کہ آپ میں خود نظمی ہو. اور چاند چھوڑ دیجئے, आप अपने घर से निकलकर साथ दो गलियां छोड़कर एक ग्रोसरी शॉप है, वहां ग्रोसरी लेने नहीं पहुंच सकते अगर आपके अंदर खुद नज़्मी ना हो। और सबसे मुश्किल काम यही है, ये भी आपको बताऊं, जितनी बातें अभी तक हमने सीखी है ना, ये निस्बतन आसान थी। आपने अपने तहतो शऊर की कारकुन कुव्वत से बताया कि आप अपना एक नया तशख्सात बना रहे हैं, यानी आपने इरादे किए, प्लान किए, आप आसमानों पे पहुंच गए, लेकिन खुद को मुनज्जम ना करने की वजह से आपके सब प्लान जाया होते हैं। आप बैठ के यहाँ सोचिए, आखिर कब मैं नाकाम हुई, यानी अपनी आखिरी नाकामी सोचें। मसलन कल रात की दावत भी मैं उस तरह अरेंज नहीं कर सकी जैसे करना था। चलिए, मैंने इस टेस्ट की भी उतनी तैयारी नहीं की जितनी अच्छी करनी थी, अगर आपको एज अ स्टूडेंट लूँ तो। क्यों नहीं की मैंने? क्या मेरे पास 8 दिन नहीं थे? क्या मैं अपने दिन में से हर दिन 15 मिनट नहीं निकाल सकती थी टेस्ट को तैयार करने के लिए? कर सकती थी, पर हुआ क्यों नहीं? खुद को मुनज्जम नहीं किया। यकीन करें, जितनी देर में लोग ये रोना रो रहे होते हैं, वक्त नहीं, टाइम नहीं, मौका नहीं, ये नहीं वो नहीं, उससे कम वक्त में वो काम हो जाता है और दिमाग से भी चीज़ उतर जाती है। अब यहाँ से उठ के निकले, मैंने 10 काम करने हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा, इतनी हड़बूंग मचेगी कि आप वो 10 भी नहीं कर पाएंगे और आप ये क्लास भी नहीं सुन सकेंगे। आप कहे जो काम कर रही हूँ वो पूरी करूँगी फिर आगे चलूँगी। 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, इसी टेबल पे चेयर पे थी क्लास के बाद। अक्सर जब सब चले जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं अगले दिन की तैयारी कर लेती हूँ, जो भी मेरे काम होते हैं मुझे यहाँ बैठ के करने अच्छे लगते हैं। तो इतने में मुझे इस पे व्हाट्सएप पे एक सिस्टर का मैसेज आया, और उन्होंने पहले मुझसे कहा हुआ था, तो मैं अक्सर जो भी लोग पूछे तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप 3 से या 4 बजे के बाद बात कर करना चाहें तो वीकडेज में कर लें। तो मैं नाम जानती नहीं भी थी इतना दूसरे मुल्क की बात, तो मुझे कहने लगी कि मैं आपको अब कॉल कर लूँ, तो उसके से अब कर लो से मुझे समझ आ गया कि मैंने खुद ही कहा होगा इस टाइम पे ना, और कोई फ़ोन से पहले कॉल करने का पूछ ले तो ये और भी अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ना एक टॉपिक तैयार कर रही थी अगले दिन की तफसीर का, और अभी मैंने उसको शुरू किया था और बस मेरा माइंड सेट हो रहा था, आधा आधा मैंने कर लिया था, पढ़ रही थी उसको। मैंने सोचा कि अब मैं सच, वो सच्ची है, मैंने उनको कहा था जिस टाइम पे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया, मैसेज भी किया करने से पहले कॉल। तो पर मैंने कहा अगर अब मैंने इनको कहा ओके तो ये जो मेरा माइंड सेट हुआ है ना, अभी ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने उन्हें इधर मैसेज किया, मैंने कहा आपने जो मुझे कहना है ना आप ऑडियो में मैसेज भेज दें तो मैं उसको सुन के फिर आपको कॉल करती हूँ। तो मैंने इधर 2 मिनट में उनको टेक्स्ट मैसेज लिखा, तो उसके जवाब में, नहीं बात ज़रा लंबी है, अब तो मेरा और दिल बैठ गया, अब बात ज़रा लंबी है, तो मैं तो अब और दिल में सोच लिया कि मैंने अभी नहीं लेना। फिर मैंने उसके बाद खुद उनके फ़ोन व्हाट्सएप पे इधर से ऑडियो मैसेज छोड़ा, मैंने कहा सिस्टर बाज़ दफ़ा ये होता है कि बात कर जब मैं भी बोलूँगी आप भी बोलेंगे ना, तो आपका मसला समझ नहीं आएगा, तो आप इधर जैसे मैं अब आपको ऑडियो छोड़ रही हूँ आप अपना मैसेज छोड़ें, तो मैं फिर उसको पूरा सुन के सुकून से तो फिर मैं आपसे बात करूँगी। अल्लाह की बंदी को बात समझ आ गई, फिर मुझे समझ आ रही थी कि वो ऑडियो मैसेज छोड़, मेरा लेकिन उन्होंने 10 मैसेज मुझे छोड़े। और जब उन्होंने साथ कोई कह देना कि रिश्ते नाते का मसला बच्चों का, फिर तो मुझे समझ आता है, इन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनानी। बहरहाल वो बिजी हो गई, मैंने टुन टुन भी बंद कर दी, मैं पूरे सुकून से अपना वो टॉपिक तैयार कर, मैंने इंजॉय किया, और मुझे पता था बाद में मैंने इनकी हेल्प करनी है। मैंने अपना वक्त लिया, आधा घंटा 20 मिनट जितने भी मुझे लगे, जब मैं अपना वो काम कर चुकी जो मैं कर रही थी ना, तो मैं फिर हमारी आदत है घर में भी थोड़ा सा काम करके थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, फिर काम करती हूँ फिर रिलैक्स होती हूँ, चाहे वो पानी का ग्लास पी लूँ, खजूर खा लूँ, बैठ के मैसेज चेक कर लूँ, यानी जहाँ मुझे फील होने लगे ना कि अब मैं थक जाऊँगी तो मैं उससे पहले छोड़ देती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं लाना अपने ऊपर। खैर, मैंने उस रिलैक्सेशन के टाइम में उनके मैसेज प्ले किए, एक एक करके उनका 2, 3, 4 मैसेज आए, मुझे पूरी बात समझ आ गई कि जो उनका इश्यू था, जो भी वो चाह रही थी करना। अब फिर मेरे लिए क्वेश्चन ये था कि मैं बात करूंगी ना तो मुझे वो फिर ही सुनाएंगी, पक्की बात है, लोग कहते यही है कि एक बात है लेकिन दोबारा वही, और जब कोई बात फोन पे करता है वल्ला ही हम इतनी दफा रिपीट करते हैं। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके उनका पूरा सुना, फिर मैंने उनके जवाब में मैंने भी ऑडियो रिकॉर्डिंग की, मैंने कहा मैंने बड़े सुकून और इत्मीनान से आपकी बात सुनी है, मुझे आपका इशू समझ आ गया, आप मेरे मशवरे के मुताबिक ये करें। तकरीबन मैंने 2-2.5 मिनट की काफ़ी डिटेल से उनको बात कर दी, मैंने कहा कि आप इस पे काम करें और बहुत बेहतर है, आपकी बच्ची का मसला है तो आप मेरी उनसे बात करा दें, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब मेरा मैसेज सुनने के बाद अपनी बच्ची को सुनाएं, फिर ना समझ आए तो फिर हम फ़ोन पे बात करेंगे। ऐसे हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैसेज भेजा, उन्होंने फ़ौरन सुना, उसके बाद शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी मदद की, मुझे समझ आ गया ये है वो है, बात ख़त्म हो गई। टोटल अगर आप देखें ना तो मैंने उनको कितना वक्त दिया, जिस वक्त मैं बोली हूँ 2-2.5 मिनट, जो वो बोल के सुना रही थी उस वक्त तो मैं कुछ और साथ कर रही थी, मैंने उनको सिर्फ 2.5 मिनट दिए। और अगर ये फ़ोन कॉल होती तो मैं कह सकती हूँ आधे घंटे से कम कभी भी नहीं होनी थी, और मैंने एक बात बोलनी थी ना तो उन्होंने बीच में आधी दूसरी बोल देनी थी। तो ये खुद नज़मी है, इसकी कोशिश करें, लिखें, कभी कोई काम अधूरा छोड़ के बीच में ना उठें। मुझे एक लेक्चर याद आ रहा है, बहुत पहले दिया था, ऑनलाइन पे होगा यकीनन, टाइम सीरीज है जो, उसमें टाइम वेस्टर्स, टाइम वेस्टर्स में से एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर आपका पता क्या है मेरा, कि हम अधूरा काम छोड़ के उठ जाते हैं। तो दोबारा आने के बाद उसका माइंड सेट करने में फिर उतना ही टाइम लगता है। ईमेल लिख रहे थे आधी छोड़ी तो जेन भटक गया, ईमेल डिलीट हो गई, मैसेज इधर उधर हो गया। खाना पका रहे थे आप, खाना पकाने के दौरान आप बीच में चले गए, चूल्हा बंद कर दिया, टाइम वेस्टर कैसे है, दोबारा आएंगे ना वो खाना ठंडा हो चुका है, फिर चूल्हा चलाएंगे, फिर उसको उसके उस टेम्परेचर पे लाने में आपको टाइम लगेगा। तो उसमें काफी ज्यादा बात की थी, अधूरे काम छोड़ के बीच में ना आए, अपना हक दें। हम बस दफा दूसरों को हक देते देते अपना हक भूल जाते हैं, हम कहते हैं नहीं इनको दें। जरा सी अगर आप मेहनत कर लेना और कुछ अरसा आप वही करें जो आप करना चाहते हैं, आप जो हैं वो बने। हम सारी जिंदगी दूसरों की मदद करने के रंग में अपनी मदद भी नहीं कर पाते। आप पहले अपने लाशऊर, तहत शऊर कहते हैं ना, सब कॉन्शियस, उसके अंदर अपना एक किरदार बनाए। मुनज़्ज़म करने का तरीका कहाँ से शुरू होगा, सबसे पहले अपने सब कॉन्शियस में अपनी एक पिक्चर बनाए, बहुत ऑर्गेनाइज पर्सन हर लिहाज में। अच्छा, हर एक की ऑर्गेनाइजेशन फ़र्क होती है, खुद नज़मी के कई रूप हैं, कुछ लोगों का घर डिस्टर्ब होता है, बिखरा होता है, कुछ का किचन बहुत मैसी होता है, कुछ के जैसे मैं बात कर रही थी अभी, बात करना मैसी होता है, एक बात को 6 दफ़ा दोहराएंगे फिर भी कहते हैं कि मैं आपको अपनी बात समझा नहीं सकी। अपना वो चोर ढूंढे, फिर उसके बाद आप उसको देखें, और इसमें आपने काम करना है अपनी आदतों में। असल में इसको मैं खुद नज़मी की बजाय अगर आसानी में कह दूँ ना कि मैनेज योर हैबिट्स, तो ज़्यादा सही होगा। आप अपनी सारी आदतें लिखें, अच्छी बुरी, आदत तो आदत ही है ना। और आपको पता है लफ्ज़ आदत को आदत क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है इसका रूट? आदत ता नहीं इसमें रूट की, आदा या उदू ईद वाला रूट है, बार बार आना, रेपिटिशन। ता जो है ना ये छोड़ दें, ये आपके मतलब की नहीं है। आदतें वो चीज़ होती हैं जिसको हम बार बार दोहराते हैं, और आदतें तबसरों से जन्म लेती हैं, मसलन इश्तहारात के जरिए, फिर जूं जो आप इन्हें अपनाते जाते हैं वो मश्क के साथ, एक्सरसाइज के साथ, प्रैक्टिस के साथ मजबूत हो जाती हैं, तहें लग जाती हैं। फॉसिल्स होते हैं ना पहाड़ों में, आप देखें पहाड़ काटें तो उसकी लेयर से आपको पता चल जाता है ये पहाड़ कितने साल पुराना है। इसी तरह ये आदतें तह दर तय करके पुख्ता हो जाती हैं, और एक वक्त आता है कि ये आपका रवैया बन जाती हैं, ये छोड़ी नहीं जा सकती। खुद नज़मी वो वाहिद तरीका है जिससे आप अपनी आदतों को तोड़ सकते हैं। इसके ज़रिए से आप अपने ज़ाती तशख़्स में दूर रहने वाली, यानी एवर लास्टिंग, देर पा कोई भी नाम लिख ले, तब्दीली ला सकते हैं, और ख़ुद नज़मी आपको अपने मकासद में कामयाब कर सकती है। है क्या, एक ज़हनी प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, जो ख्यालात जहन में हों इनके लिए खुद को वक्फ करना, ये खुद नज़मी है। लिखें, जो ख्यालात जहन में हैं इनके लिए खुद को वक्फ करें आप, ये है आपकी खुद नज़मी। बस सिर्फ हमारा जहन कुछ और सोच रहा होता है और हम लोगों के इशारों पर नाच रहे होते हैं, वो दुरुस्त नहीं होगा। खुद नज़मी आपको हर लम्हा बताती रहती है, अल्फाज के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए, फिर इसी तरह नज़रियात जज्बात के ज़रिए आप अपनी तमाम की तमाम ज़ाती फतूहात हासिल करेंगे। कब? जब आप ये सोच लेंगे कि मैंने अपनी इस आदत को तब्दील करना है। अब देखिए, कोई भी दुनिया का कामयाब इंसान है, आप उसकी ज़िंदगी लें, औरत है या मर्द, हमेशा अपनी फील्ड से बाहर भी रहते हैं ना, तो भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। मसलन क्रिकेटर्स, क्रिकेट खेलने के लिए अगर वो उस मैदान में जाके सारे काम करें तो खेल सकेगा, हाथ ही नहीं उठेगा। चले, फौजियों में आपके रिश्तेदारों में कोई फौज में होगा, आपको तो सारा साल फौज क्या करती है? ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, वरना दुश्मन को देख के सांस भूल जाएगा। कामयाबी के लिए आपको अपनी आदतों की प्रैक्टिस आगे पीछे करनी है, ना कि वो वक्त आ जाए तो। बात समझे? आप प्रैक्टिस करें, अपने तजुर्बे को जहन में उभारें, हर तजुर्बे को। मसलन जैसे टेस्ट की बात है ना, तो जैसे शुरू में आपको बताया कि टेस्ट का ये इशू है, अब टेस्ट नहीं आई सीख, फिर भी चेक करें, हर दिन मैंने 15 मिनट सबक को देने हैं। ये आपकी आदत को डेवलप करेगा। एक वीक टेस्ट है, एक वीक टेस्ट नहीं है, जिस वीक टेस्ट नहीं है उस वीक प्रैक्टिस करें, ताकि जिस वीक टेस्ट होगा फिर मुश्किल नहीं लगेगा। अपनी आदतों को इतना पक्का कर लें कि वो आदत ही हो जाए। स्की करते हुए देखा लोगों को, एक स्की करने वाला था तो कहने लगा कि मैं कभी गिरता नहीं हूं। वजह क्या? कहता, जब मैं रात को सोता हूं ना, तो सोने से पहले मैं तस्वुर में अपने आप को दिखाता हूं कि मैं स्की कर रहा हूं, और मुझे अपनी हर हरकत करती हुई दिखती है कि मैं ठीक कर रहा हूं, तो जब अगले दिन जाके वहां मैं स्की करता हूं तो मैं गिरता नहीं हूं। पहले जहन में घर बनाए अपना, फिर उसको तस्वुर के बाद लेकर बाहर आए। वो काम जिसको आप हकीकी जिंदगी में आने वाले दिनों में करना चाहते हैं ना, अगर इसे तस्वुर में पहले से करता हुआ देखें, तो उसके सारे लूप होल सामने आएंगे, जिसको रिहर्सल कहते हैं। सारे मराहल आप पर रोजे रोशन की तरह वाजे हो जाएंगे। जब हकीकत में करते हैं तो अजनबीयत ही नहीं महसूस होगी। हमारा हाल क्या, हम कहते हैं ऐसे, मैं आज पेन बड़ी देर बाद पकड़े ना, तो नोट्स नहीं लिए जा रहे, ये कहते हैं ना। तो जब पेन पहले से पकड़ा होगा तो फिर नोट्स लिए जाने आसान लगेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए, एक और फायदा होगा, खुद एतमादी आएगी। एक और फायदा भी होगा रिहर्सल से, खौफ जो होता है ना उस काम के करने का, आप उस पर काबू पा लेंगे। आप कहेंगे नहीं, कुछ नहीं होता। मसलन कोई नया नया डॉक्टर बन रहा है, तो इंजेक्शन लगाने का खौफ हो सकता है ना। जब आप पहले से ये तसव्वुर में कर चुके होंगे तो वो खौफ नहीं होगा। तो लिखिए एक जुमला, काम को पहले अंदर करना सीखें फिर बाहर। हमारा अंदर बहुत कीमती है, हम इसको अक्सर बिल्कुल भूल जाते हैं। पहले अंदर लेके जाएं फिर बाहर लाएं। खुद नज़मी या अपनी तरबियत आप करने का काम एक एक्शन है, और कामयाब इंसान जो होता है ना, इसके जरिए अपने आप को आने वाले मरहले के लिए तैयार करता है। इनको मालूम है कि तसव्वुर, आप इसका नाम तसव्वुर भी लिख सकते हैं। तसव्वुर क्या है? इमेजिनेट करना। तसव्वुर इस कायनात की एक बड़ी ताकत है। आप तसव्वुर कर लेते हैं ना कि ये काम करना है, तो अल्लाह वो काम करा लेते हैं। कामयाब लोग किसी काम से हाथ नहीं उठाते, वो कभी ये नहीं कहते मैं ये कर नहीं सकती, ना वो कभी थकते हैं। वो गिरते हैं, उठते हैं, अपने कपड़े झाड़ते हैं, फिर उसी काम में लग जाते हैं, और इस बार पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। आपने सुना होगा वो सिकंदर आजम का किस्सा, बार बार उसको शिकस्त हो रही थी, कितनी दफा उसकी फौज की शिकस्त की खबर आई, तो थक के एक जगह बैठ गया। सामने दीवार थी, उस पर एक चींटी चढ़ रही थी, थोड़ा सा ऊपर चढ़ती फिर गिरती, फिर चढ़ती फिर गिरती, वो देख रहा था। बस अल्लाह ने उसका अंदर खोल दिया। ये चींटी होकर बार बार गिर के चढ़ रही, और एक वक्त है कि वो चढ़ गई, तो मैं भी चढ़ सकता हूँ। पूरे जोश और अजम के साथ फिर हमला किया, और उसमें सिकंदर आजम बन गया। तो जीने के लिए अपने अंदर नज्म ज़ब्त को उभारना, हर काम से पहले जहन के अंदर वही काम करना है। ये आपको अब सारी टिप्स दे रही हूँ। फिर ये एक्सरसाइज सोने से पहले करनी है। अगले दिन जो काम करने हैं ना, उसके बारे में आज रात पहले से सोच रहे हैं, और जीतने को एक आदत बनाना है, मैंने हारना नहीं है। और हमारे पास खोने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं है। स्पेस शटल का नाम सुना है? आपको पता है कि स्पेस शटल कितने मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में बनती है? कई साल लगते हैं, और जब ये ऊपर जाती है ना, तो इसमें से 80% चलते ही गिर के जल जाती हैं। वजह एक है सिर्फ, ग्रेविटी। जो स्पेस शटल ग्रेविटी को फेस करके ऊपर चली जाए ना, वो सिक्योर है, वो फिजा में जाके आजाद हो जाती है। लेकिन ग्रेविटी का जो पुल है ना, वो उसको नहीं ऊपर जाने देता। इसके बावजूद भी कितनी जली आप अपने ऊपर ले ना, हमें कितनी ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की कोई इन्वेस्टमेंट करें, वो जल जाए तो हम अगली बनाएंगे। लेकिन जो शुरू की जली गिरी, उसके बाद अभी भी बन रही है। हिम्मत है ना, यानी आप कहें खुद नजमी में अपना नुकसान बर्दाश्त करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। कोई बात नहीं, ये आखिरी मौका नहीं था, फिर होगा। तो आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से करें। करें क्या? अपने आप को कहें, मैं इस काम को कर सकती हूँ, बार बार करूंगी। अगर मैं इसको ना कर सकी तो कौन करेगा? फिर इस तरह ये भी कहें, जब कोई दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बस आप देखिए कि बच्चा पैदा करना एक बच्ची के लिए बहुत बड़ा मरहला होता है, लेकिन वो अपने से पहले की औरतों को देख के दुबली पतली बच्चियों के चार चार बच्चे होते हैं, वो कर सकती हैं। वो उसके बाद जिंदा बच गई तो मैं भी जिंदा बचूंगी। अपने आप को हमेशा आगे रखें। फिर अपने अंदर खुद नजमी को भरने के लिए क्या करें? नंबर एक, एक फहरिस्त बनाए, अपनी लिस्ट बनाए। इसमें 5 ऐसे काम लिखें जो करने जरूरी हों, मगर नाखुशगवार या तकलीफ दे होने की वजह से आज तक आप इनको टालते ही जा रहे हैं। है कोई वैसे आपका? सबका होगा। मुझे भी अपना कोई याद आ गया, और मैंने अभी नियत की है कि मैंने वो काम करना है इस वीकेंड पे। कुछ कामों में हमें मजा नहीं आता ना, फिर हम टालते ही रहते हैं, फिर से फिर से फिर से। लेकिन हमारी अधूरी चीजें होती हैं, सच्ची बात होती है, और खास तौर पर जिसमें मजा ना आ रहा हो बाद में। चीजें पूरी करने की आदत बहुत कम होती है। मैं देखती हूँ ये भी शुरू से बचपन से घड़ी होती हैं चीजें। बास लोग एक चीज के पीछे बढ़ जाते हैं, जैसे अपने इर्द गिर्द भी मैं ऐसे कई लोगों को देखती हूँ कि वो जब एक चीज के पीछे बढ़ जाए ना, पूरा करके ही सोना है, थक जाए जो भी, यानी करके सोना है। तो अधूरी चीजों को पूरा करना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। 5 काम वो ढूंढे जो आपने पेंडिंग पे डाले हुए, अब उन फाइलों को दोबारा खोले और उसको दोबारा पूरा करें। आप देखेंगे आपको एक अचीवमेंट का एहसास होगा। करना तो है ना, पहले शौक के लिए कर रहे थे, अब मजबूरी के लिए करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात, अपने जहन में अपने मकासद की तस्वीर के साथ साथ इसे मुकम्मल करते हुए देखें। इमेजिनेशन में सोचें, मैं इम्तिहान में फर्स्ट आई हूँ। अपने आप को कहें, क्लास में मेरा नाम बोला जा रहा है, मैंने 100 में से 100 नंबर लिए, मैं कामयाब हो गई हूँ, मेरे माँ बाप मुझ पर रश कर रहे हैं, मेरे दोस्त मेरी तारीफें कर रही हैं, और इसके बाद मुझे एक बहुत आला ओहदा पेश किया जा रहा है, फिर उसके बाद मेरे पास एक कामयाब जिंदगी है। तसव्वुर में सोचें, खुद को धक्के, इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर इसका तीसरा एक टिप क्या है कि जो काम आपको करना है ना, उसे जहन में मरहला वार करें, स्टेप्स में करें, करते हुए देखें। मसलन अगर आप हिसाब में कमजोर हैं, आपकी मंजिल क्या है? कि आपका मैथ ठीक हो जाए। अब सोचें, पहला मरहला, सुबह सुबह उठती हूँ, कागज कलम कापी आपके सामने, तो आप प्लस को शुरू करते हैं, बस। अगले दिन मल्टीप्लाई, तीसरे दिन वो एवरेज निकालें, जहन में बिठाएं, अपने तसव्वुर में एक एक काम जो मुश्किल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यदि इसमें ये लिखिएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स काम पे करें। हर दिन बस एक बात सीखूंगी और चल पड़ूंगी। बस आप इधर है ना, आपको ग्रामर मुश्किल लगती है, बस एक लफ्ज सीखूंगी, इसम क्या है, खत्म। कुरान में से इसम ढूंढूंगी, बस सारे कुरान के इसम मुझे आ गए, वाह बड़ी कामयाबी है। फिर फेल ढूंढूंगी, फिर हर्फ ढूंढूंगी। इस तरह बेबी स्टेप्स लें, यानी आप लिखे खुद नजमी के लिए बेबी स्टेप्स बहुत अहम होते हैं। फिर अगली चीज क्या है कि जो आपके आराम के लम्हात होते हैं ना, जब आप रिलैक्स हो रहे होते हैं, हम में से हर एक रिलैक्स होता है, उस वक्त में आप अपने जहन को इस्तेमाल करें इन मकासद को लेने के लिए। सबसे अच्छा वक्त सोने का वक्त है। आपको तो हम सोते वक्त जो काम करते हैं ना, वो रात ख्वाबों में भी आ जाता है। फिर मुसलसल करें, ये बहुत अहम है, कंटिन्यूटी, फिर ही आदत बनेगी। और अगर आप एक काम करके थक जाए ना, थोड़ी वॉक करें, चहलकदमी की आदत डालें, इससे जहन पे खुशगवार असर पड़ता है। इवन सर्दी है, मोटे कपड़े पहनकर आप बाहर घूमें, आपको अच्छा लगेगा। आप अंदर आएंगे तो आप फ्रेश हो चुके होंगे, आपको महसूस होगा कि वाकई मैं फ्रेश हो गई हूँ। अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज लाएं। आप किसी दिन बोर हो रही हैं, अच्छा पता क्या वजह है, हम बहुत डिसऑर्गेनाइज कब होते हैं, बोर होते हैं, होपलेस हैं। अच्छा सा सूट निकालें जो आपको बहुत पसंद है, वो पहनें। अपनी पसंद का कोई मज़े का खाना पकाएं और खाएं। अपने आप को खुश करें। हर बंदा एक चीज़ से खुश होता है ना, आप अपने आप को चेक करें, आप किससे खुश होती है। मसलन आपको लगता है कि आप चाय के साथ टोस्ट और ऑमलेट बना के एक जगह बैठ जाए तो आप बहुत इंजॉय करती हैं। जिस वक्त आपका जहन ऐसे डिस्टॉर्टेड है ना, समझ नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेशन है, घबराहट है और कुछ नहीं दिल करना, सब बेकार है, उस वक्त आप अपनी पसंद का काम करें। किसी को कपड़ों का शौक है ना, अपनी अलमारी खोल के देखना शुरू हो जाए, अच्छा ये कब बनाया था, ये कैसा था, अच्छा ये कब पहनूंगी, अच्छा ये आगे आगे कर दूँ, ये पीछे कर दूँ, ये कर। हमेशा वो काम करें ऐसे वक्तों में जिसमें आपको मज़ा आता है। ये आपको तैयार कर देंगे उन कामों के लिए जिसमें आपको मज़ा नहीं आता। आपको होता है कि हमारी नानियाँ दादी हमेशा अपने हाथों से स्वेटर बुन के बनाती थी। मेरी आंखों के सामने वो सारे स्वेटर जो नानी ने बुने हुए हैं, मेरी अपनी अम्मी अभी तक बुनती हैं। हालांकि कोई पहने ना पहने, आजकल लोग घर के स्वेटर पहनते भी नहीं हैं, पोतों के, पोतियों के, नवासों के, जो जिसका पहनाना शौक से। तो उसमें आप देखते हैं कि उनके पास इतना वक्त नहीं होता था कि हम खुश हैं कि नहीं, हमारे शौहर हमारा ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। फिर हर वक्त अपने ऊपर रहम नहीं खाते। आज आप देखिए फारिक बच्ची है ना, मियाँ प्यार नहीं करते, बाहर नहीं ले जाते, मैं बोर होती हूँ, मुझे फलां याद आता है। प्रैक्टिकल इंसान कभी बोर नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इसी ज़िंदगी में सीधा कर दे। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट टॉपिक खुद जहती होगा, याद रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।